पृष्ठ संख्या 155, अध्याय 6, फरुखाबाद घराना। तबला वादन के क्षेत्र में लखनऊ घराने की उपादेयता के विषय में जितना भी लिखा जाए कम है। उससे एक शाखा बनारस तो दूसरी फरुखाबाद गई। लखनऊ घराने के प्रवर्तकों में से एक उस्ताद बक्सु खान ने फरुखाबाद घराना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवक विलायत अली को तबले की श्रेष्ठ शिक्षा दी और बाद में उससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। अपने उस्ताद और ससुर से तबले की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे फरुखाबाद चले गए और वहां तबले का खूब प्रचार किया। उन्होंने लखनऊ की वादन शैली में मौलिक अंतर करके तथा नवीन ढंग की अनेक रचनाएं करके फरुखाबाद को एक घराने की प्रतिष्ठा दिलाने में सफलता प्राप्त की। यही विलायत अली बाद में उस्ताद हाजी विलायत अली खां के नाम से विख्यात हुए। हाजी साहब ने बचपन में ही तबला सीखना प्रारंभ कर दिया होगा, परंतु उसका विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। हाजी विलायत अली खां अपने युग के एक उत्कृष्ट तबला वादक, विद्वान, रचनाकार एवं कुशल शिक्षक थे। उनका वादन अत्यंत क्लिष्ट एवं लयकारी युक्त था। गुणी जनों का यह मत है कि ऐसा नायक और रचनाकार सदियों में ही पैदा होता है। उन्होंने लखनऊ घराने के बाज में परिवर्तन करके एक नवीन शैली को जन्म दिया। उनका बाज लखनऊ की तरह न तो नृत्य से प्रभावित था और न तो पंजाब बनारस की भांति अधिक खुला और न ही दिल्ली अजराने की तरह बंद। उन्होंने अपने वादन में चाटी और स्याही को समान महत्व दिया। इस प्रकार अपनी नवीन शैली के अनुरूप पृथक ढंग से गतों की रचना करके उन्होंने एक नवीन घराने को जन्म दिया, जो फरुखाबाद घराने के नाम से आज सर्वत्र प्रसिद्ध है। उनकी जो गतें आज सुनने को मिलती हैं, वे रचना की दृष्टि से इतनी अप्रतिम है कि आधुनिक तबला वादकों में न केवल लोकप्रिय है, बल्कि उन्हें प्रस्तुत करने में आज का कलाकार गौरव का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि विलायत अली साहब अनेक बार हज करने गए और प्रत्येक बार अल्लाह पाक से तबले की विद्या की दुआ मांगी। हकीम मोहम्मद करम इमाम मौदन उल मूसिकी में लिखते हैं कि हाजी विलायत अली गत वादन में कुशल थे। हज करने के पश्चात उन्होंने महफिलों में बजाना छोड़ दिया था। हाजी साहब कलाकार के साथ साथ एक अच्छे गुरु भी थे। उन्होंने उस युग में तबला का एक विद्यालय खोला था, जब विद्यालय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सन 1847 ईस्वी से सन 1857 ईस्वी पर्यंत लखनऊ दरबार में वाजिद अली शाह का राज्यकाल रहा। हाजी विलायत अली खां भी उन दिनों लखनऊ दरबार में थे। सन 1857 ईस्वी में नवाब साहब की राज्य का सूर्यास्त हुआ। उसके हाथ साथ ही लखनऊ के अनेक कलाकार आश्रयहीन होकर अन्य स्थानों पर चले गए। पृष्ठ संख्या 156। उन दिनों रामपुर रियासत में संगीत का उच्च स्तरीय वातावरण था। रामपुर के विद्या व्यवसनी तथा संगीत प्रेमी नवाबों ने अनेक पंडितों, गुड़ीजनों तथा कलाकारों को दरबार में आश्रय दिया था। लखनऊ के भी बहुत सारे कलाकार रामपुर चले गए, जिनमें हाजी साहब भी थे। सन 1857 ईस्वी में संगीत प्रेमी नवाब यूसुफ अली खां रामपुर की गद्दी पर बैठे। हाजी साहब उनके दरबार में कलाकार नियुक्त हो गए। उनके पश्चात उनकी कई पीढ़ी वहां चलती रही। अतः तबले के फरुखाबाद घराने के विकास और सफलता में रामपुर दरबार का योगदान महत्वपूर्ण रहा। फरुखाबाद घराने की परंपरा। हाजी विलायत अली के ज्येष्ठ पुत्र निसार अली खां तबले तथा पखावज के विद्वान व्यक्ति थे। वर्षों तक वे रामपुर के दरबारी कलाकार रहे। उनके शिष्यों में उनके छोटे भाई हुसैन अली खां का नाम प्रमुख है। उस्ताद मुनीर खान ने भी अपनी बाल्यावस्था में उस्ताद निसार अली से शिक्षा पाई थी। उनकी वंश परंपरा के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हाजी साहब के दूसरे पुत्र का नाम अमान अली था। वे भी तबले की कला में पारंगत थे। दुर्भाग्य से वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। ऐसी अवस्था में उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इससे क्षुब्ध होकर वे अस्थायी रूप से जयपुर चले गए। तत्पश्चात उन्होंने आजीवन परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखा। अतः बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जयपुर के उस्ताद अमान अली खां हाजी साहब के पुत्र थे। उस्ताद अमान अली की उत्तरावस्था में जयपुर के नृत्य घराने के कथक सम्राट जियालाल जी, जो कि उनके एक शिष्य हुजूरुद्दीन के शागिर्द थे, उनसे तबला सीखने लगे थे। प्रखर बुद्धि के प्रतिभाशाली किशोर जियालाल ने गुरु भक्ति और सेवा से उस्ताद का मन जीत लिया। खां साहब उन्हें बहुत प्यार करने लगे और उन्होंने खुले दिल से तबले की दीर्घ तालीम तथा लयकारी का उत्तम ज्ञान दिया। पंडित जियालाल जयलाल का नाम कथक नृत्य के क्षेत्र में अमर है। वे नृत्य और तबला दोनों में अद्वितीय थे। इलाहाबाद के प्रोफेसर लाल जी श्रीवास्तव ने पंडित जी से भी तबले की शिक्षा प्राप्त की थी, जिनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या काफ़ी लंबी है। हाजी साहब के तीसरे पुत्र का नाम हुसैन अली खां था। हुसैन अली को अपने पिता से विरासत में तबला मिला था। तत्पश्चात उनके दीर्घ तालीम उनके बड़े भाई उस्ताद निसार अली खां से संपन्न हुई। उस्ताद हुसैन अली की फरुखाबाद घराने की विस्तार और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके शिष्यों में अनेक सुप्रसिद्ध उस्तादों के नाम लिए जाते हैं, जिनमें उस्ताद मुनीर खां का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तदुपरांत अता हुसैन खां, सुप्पन खां, मियन खां तीनों की परंपरा ढाका में फैली तथा मोगू खां रईस लखनऊ, उनके शिष्य रघुनंदन रामपुर तथा शिष्य पंडित भीष्म देव बेदी दिल्ली आदि के नाम प्रमुख हैं। उस्ताद मुनीर खां अपने समय के सुप्रसिद्ध तबला नवाज तथा अद्वितीय शिक्षक माने जाते थे। उन्होंने उस्ताद हुसैन अली के उपरांत दिल्ली घराने के उस्ताद बोली बख्श से भी सीखा था। उनके शिष्य प्रशिष्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर महाराष्ट्र में तबले का विस्तृत प्रचार हुआ। पृष्ठ संख्या 157। उनके प्रमुख शिष्यों में उस्ताद अमीर हुसैन खां भांजे, उस्ताद गुलाम हुसैन खां भतीजे, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद नासिर खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां मेरठ, शमसुद्दीन खां मुंबई, पंडित सुब्बा राव अंकोडकर गोवा इत्यादि हैं। उनके प्रशिष्यों की संख्या अत्यंत विशाल है। इस पुस्तक की लेखिका ने भी इसी परंपरा के उस्ताद अमीर हुसैन खां से तालीम पाई है। उस्ताद नन्हे खां उस्ताद हाजी विलायत अली के चौथे पुत्र थे। कुछ लोग उन्हें पुत्र न मानकर पौत्र हुसैन अली का पुत्र मानते हैं। एक सज्जन का मत है कि उस्ताद नन्हे खां को अपना दामाद बनाने हेतु हाजी साहब ने पुत्रवत पाला था। यद्यपि नन्हे खां के पुत्र परिवार के लोग उन्हें हाजी साहब का पुत्र ही मानते हैं। जो भी हो, उस्ताद नन्हे खां ने हाजी साहब से सीखा था। उनका जीवन मुख्यतः रामपुर दरबार में बीता। उनकी शिक्षा भी वहीं हुई। इसी परंपरा के उस्ताद नजर अली खां नामक एक अच्छे तबला वादक भी उन दिनों रामपुर दरबार में थे। उस्ताद नन्हे खां के पुत्र उस्ताद मसीद उल्ला खां मसीद खां रामपुर के प्रसिद्ध उस्ताद माने जाते थे। नवाब हामिद अली के स्वर्गवास के बाद रामपुर दरबार से उनका मन उचट गया और वे कलकत्ता चले गए और जीवन के अंत तक वहीं रहे। उनके पुत्र उस्ताद करामतुल्ला खां अपनी परंपरा के अप्रतिम कलाकार थे। आजकल उनके युवा पुरुष पुत्र साबिर खां इस घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस्ताद मसीद खां के शिष्यों में सर्वश्री रायचंद्र बुराल कलकत्ता, ज्ञान प्रकाश घोष कलकत्ता, हीरेंद्र किशोर राय चौधरी मैमन सिंह, मुन्ने खां लखनऊ तथा अजीम खां जावरे वाले के नाम उल्लेखनीय हैं। हाजी विलायत अली के एक दामाद हुसैन बख्श हैदराबाद के निवासी थे। उनसे फरुखाबाद घराने की विद्या दक्षिण में फैली है। उनके अनेक शिष्यों में उनके दामाद उस्ताद अल्लादिया खां उर्फ अल्लाउद्दीन खां, अल्लादिया के दो पुत्र मोहम्मद खां तथा छोटे खां और मोहम्मद खां के शिष्यों में शेख दाऊद का नाम प्रमुख है। हाजी साहब के गुरु भाई तथा साले मियां सलारी खां को कुछ लोग उनका शिष्य भी मानते हैं। अपने गुरुपुत्र को शिक्षा देने की प्रथा उस्तादों में प्रचलित है, अतः हाजी साहब ने भी सलारी मियां को सिखाया हो यह असंभव नहीं। सलारी मियां अपने युग के कुशल वादक एवं श्रेष्ठ कलाकार थे। मौदन उल मौसिकी में भी उनकी प्रशंसा की गई है। सलारी मियां ने हाजी साहब की गतों के जवाबी तोड़े तथा दिल्ली के पेशकार में परिवर्तन करके उसका एक नवीन रूप तैयार किया। तदुपरांत चलन अथवा चाल नामक वादन प्रकार का भी प्रचार किया, जो आज भी लोकप्रिय है। चाल अथवा चलन का रूप कायदे जैसा होता है। सलारी मियां के प्रमुख शिष्यों में मुस्तफ़ा हुसैन, गुलाब हुसैन तथा हबीब उल्लाह, प्रशिष्यों में बाबू खां उर्फ हैदर हुसैन, गुलाम मोहम्मद, फयाज खां मुरादाबाद वाले, बसुआ खां, चुन्नीलाल बंदोपाध्याय, सरदार खां, मेहंदी खां, अशरफ खां, अनवर खां तथा इन प्रशिष्यों के शागिर्दों में भी अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें शिष्य जमीला खातून पाकिस्तान का उल्लेख आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 158। हाजी साहब के एक विख्यात शिष्य चूड़िया वाले इमाम बख्श हुए। उनकी परंपरा में उनके पुत्र हैदर बख्श, पौत्र बंदे हसन अलीगढ़ तथा प्रशिष्य बाबू भाई रुकडीकर एवं सत्यनारायण वशिष्ठ के नाम उल्लेखनीय हैं। चूड़िया इमाम बख्श के लिए अनेक किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि अपने उस्ताद के तबले को निरंतर सुनने की आकांक्षा से इमाम बख्श ने वर्षों तक हाजी साहब के घर पर हुक्का भरने की नौकरी की थी। वैसे इमाम बख्श स्वयं अच्छा पखावज बजा लेते थे, किंतु विलायत अली से दीर्घ शिक्षा लेने हेतु वे अपना सब कुछ त्याग कर उस्ताद की सेवा में लगे रहे। इस प्रकार वर्षों तक हाजी साहब का अभ्यास सुन सुनकर इमाम बख्श ने उनके घराने की काफ़ी विद्या प्राप्त कर ली। हाजी साहब को जब इस बात का पता चला तब वे आश्चर्यचकित हो गए, किंतु वे दिलदार व्यक्ति थे। इस घटना के पश्चात उन्होंने इमाम बख्श को अपना शिष्य स्वीकार किया तथा उन्हें शिक्षा देने प्रारंभ की। एक दूसरी किंवदंती है कि इमाम बख्श के गंडा बंधन संस्कार के अवसर पर हाजी साहब की पत्नी ने अपनी चूड़ियां इमाम बख्श के हाथ में पहना दी थी। इस प्रसंग की स्मृति में जीवन पर्यंत उन्होंने अपने हाथ में वे चूड़ियां पहन रखी थीं, अतः लोग उन्हें चूड़िया वाले इमाम बख्श कहते थे। श्री सत्यनारायण वशिष्ठ की पुस्तक तबले पर दिल्ली और पूरब के अनुसार चूड़िया इमाम बख्श के शिष्य एवं वंशजों से जो परंपरा चली उसे भटोला परंपरा के नाम से जाना गया, किंतु इस परंपरा के विषय में, यहाँ तक कि इसके नाम के विषय में भी न कोई प्रमाण मिलता है और न ही किसी पुस्तक में इसकी चर्चा है। विष्णुपुर के बेचाराम चट्टोपाध्याय हाजी साहब के ही शिष्य थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा विष्णुपुर में हुई थी। उनकी परंपरा विष्णुपुर में फैली है, जिसकी चर्चा विष्णुपुर परंपरा के अंतर्गत की जाएगी। हाजी साहब के एक शिष्य प्रसिद्ध शिष्य पटना के मुबारक अली खां थे। इनसे इंदौर के उस्ताद जहांगीर खां तथा विलायत अली पगले ने शिक्षा प्राप्त की थी। उस्ताद करम ईतल खां अहमद जान थिरकवा के नाना थे, जिन्होंने भी हाजी साहब से सीखा था। उनके पुत्र फयाज खां मुरादाबाद वाले बड़े नामी कलाकार हुए। करम इतल खां के एक भाई इलाही बख्श थे, जो हाजी साहब के साथ लगभग 30-35 वर्षों तक रहे और शिक्षा पाई। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में हाजी जी इनको बरेली के छन्नू खां की तालीम पूर्ण करने का आदेश दे गए थे। इलाही बख्श ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और 18 वर्ष तक छन्नू खां को तालीम दी। वे हाजी साहब के अंतिम शिष्य माने जाते हैं। तालीम समाप्त होने के पश्चात छन्नू खां बरेली के जमींदार तथा पीलीभीत के साहब राजा साहब के यहाँ नौकरी करते रहे। वे लखनऊ के उस्ताद आबिद हुसैन खां के समकालीन एवं प्रतिस्पर्धी थे। उस्ताद छन्नू खां की मृत्यु करीब 60-62 वर्ष की आयु में सन 1921 ईस्वी में हुई थी। पृष्ठ संख्या 159। उनके प्रमुख शिष्यों में जहांगीर खां इंदौर, मुरारीलाल बरेली, श्यामलाल पांडे पीलीभीत, गुरुदयाल मुनीम रहीम बख्श, वासुदेव प्रसाद बनारस इत्यादि थे। कुछ लोग बनारस के पंडित वीरू मिश्र को भी उनका शिष्य मानते हैं। इनके दो पुत्र अस्थायी रूप से पाकिस्तान चले गए। इस घराने के अन्य प्रशिष्यों में कादिर बख्श मुर्शिदाबाद, बाबा साहब मासेलकर महाराष्ट्र, निजामुद्दीन मुंबई, शेख दाऊद हैदराबाद, महबूब खां मिरजकर पुणे, हाफिज खां उदयपुर, निखिल घोष मुंबई, पंढरीनाथ नागेशकर मुंबई, शरद खरगोनकर इंदौर, शमसुद्दीन खां मुंबई, तारानाथ राव मैंगलोर, गिरीशचंद श्रीवास्तव इलाहाबाद, अनुपम राय मुंबई, प्रभुदत्त वाजपेयी इलाहाबाद एवं अन्य सैकड़ों शिष्य हैं। आप इन कलाकारों के नाम संलग्न तालिका में देख सकते हैं। फर्रुखाबाद घराने की विशेषताएं। पहला, यह घराना पूरब की ही एक शाखा होते हुए भी इनका बाज न तो लखनऊ के जैसा नृत्य से प्रभावित है, न बनारस तथा पंजाब जैसा जोरदार है और न ही दिल्ली के समान किनार का है। दूसरा, अन्य घरानों की भांति इस घराने में भी कायदे पेशकार आदि तो बजाए ही जाते हैं। हाँ, यहाँ रेलों को एक नवीन रूप दिया गया जिसे वे रौ अथवा रविश कहते हैं। तबला वादन में गत बजाने की प्रथा को महत्व इस घराने से ही प्राप्त हुआ है। हाजी साहब सलारी मियाँ और दूसरे फर्रुखाबाद घराने के उस्तादों की गतें आज भी विद्वानों के बीच आदर से पढ़ी जाती हैं। इन गतों को लयकारी के विभिन्न दर्जों में बजाने की प्रथा यहाँ प्रचलित है तथा इसमें तक तक एवं धीर धीर बोल समूह का प्रयोग विशेष देखने को मिलता है। इस घराने की एक अन्य विशेषता उल्लेखनीय है जिसे चाल या चलन कहते हैं। चलन की प्रथा अन्य किसी घराने में नहीं मिलती। तीसरा, स्वतंत्र वादन के प्रस्तुतिकरण के लिए यह अत्यंत सफल एवं उत्तम बाज है, क्योंकि सोलो के लिए आवश्यक सभी विशेषताएं उसमें सम्मिलित हैं। अतः इस घराने के वादकों ने स्वतंत्र तबला वादन में बहुत नाम कमाया है। तदुपरांत संयत होने के कारण संगत के लिए भी वह उपयुक्त सिद्ध हुआ है। चौथा, इस वादन शैली में क्रान घिड़ान धीर धीर किटतक तकत धा तक तक धीर धीर किटतक धेत धिग नगधिन तक नगनग आदि बोल समूहों का अधिक प्रयोग होता है। इस घराने की चर्चा करते हुए अहमद जान थिरकवा ने कहा था कि फर्रुखाबाद का तबला शुद्ध तबला है। दूसरे घराने की भांति उसमें ताशा के बोल, तीन तीन नकारा के बोल, नाड़ नाड़ ढोल तथा खंजरी के बोल इत्यादि नहीं मिलते। विविध साजों के बोलों से तबले का विस्तार तो अवश्य होता है, किंतु शुद्धता खत्म हो जाती है। जो भी हो, किंतु फर्रुखाबाद का तबला मधुर संयत एवं संतुलित है, इतना मानना पड़ेगा। आगे फर्रुखाबाद घराने के कुछ रचनाएं उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 160। चलन त्रिताल। धाति धा धाति के न धीना गे न धाति धा क्रघेन न धेना तेटे धाति के न तूना कत्ता तीन कृतक ता त्रिकृतकता त्रिकृत त्रिकृतकता त्रिकृत धाति धागे न धाति धागे न धाति धा धाति गे न धीना गे न धाति धा क्रघेन न घेना तेटे धाति घे न तूना कता तीन कृतकता त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता त्रिकृत धाति धागे न धाति धागे न धाति धा धाति घे न धीना घे न धाति धा क्रघेन न घेना तेटे धाति घे न तूना कता तीन कृतकता त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता त्रिकृत धाति धागे न धाति धागे न धाति धा धाति घे न धीना घे न धाति धा क्रघन न घेना तेटे धाति घेन तू न कता तीन कृतकता त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता त्रिकृत धाति धागे न धाति धागे न धा। कायदा त्रिताल। धा किट तक धा घेड़नक दे धा धा घेड़नक तिन्ना किड़नक ता किट तकता किड़नक दे धा धा घेड़नक घिन्ना घेड़नक धा किट तक धा घेड़नक दे धाधा घेड़नक तिन्ना किड़नक ता किट तकता किड़नक तेत ताता किड़नक घिन्ना घेड़नक धा। पृष्ठ संख्या 161 पे दर्जे की गत उद्धृत है।